आप महिला विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, साथ साथ हम जानते हैं कि अभी बहुत सेवा है शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, तो आप सब जगह स्पीकर है इसलिए आपको चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ भी आप टाइम निकाल करके विशेष हम सबके बीच हमको क्लास कराने के लिए पहुंचे हैं। आप दादियों के विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, तो हम सब डॉक्टर सविता बेन का बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से स्वागत करेंगे। और अभी हम डॉक्टर सविता बेन से ज्ञान और योग की गहराई के बारे में विशेष बातें जानेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं और हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। बाबा हमें जो ज्ञान रतन देते हैं वो एक एक रतन की वैल्यू लाखों रुपए की है, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ये कमाई हमारी अविनाशी कमाई है जो पूरे कल्प हमारे साथ रहती है। तो ज्ञान तो हम सुनते हैं सभी। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा तीन स्टेजेस हैं, एक है जानना, दूसरा है मानना और तीसरा है स्वरूप बनना। तो जानना पहली स्टेज है, 7 दिन का कोर्स करते हैं तो जान जाते हैं ज्ञान क्या है, लेकिन मानने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई बातें समझ में आ जाती हैं, कोई बातें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कुछ लोग कुछ पॉइंट्स पर जरूर अटक जाते हैं, 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे है, हूबहू कैसे रिपीट होता है, या फिर शास्त्रों की भक्ति की बातें जो बाबा हमें स्पष्ट करते हैं उन बातों को भी मानने में कईयों को बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होने लगते हैं तो हम मानते हैं। तो निश्चय में भी बाबा कहता है परसेंटेज, मानना माना निश्चय होना, कितना परसेंटेज में हमारा निश्चय है, 100% निश्चय। किसी को ज्ञान में आते ही पहले दिन ही पूरा निश्चय हो जाता है कि जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया, जो पाना था वो पा लिया। और किसी को निश्चय होने में लंबा टाइम लग सकता है। तो ये निर्भर करता है हमारे व्यक्तिगत प्रारब्ध के ऊपर कहें या तकदीर के ऊपर कहें, जो भी कहें, इस पर निर्भर करता है। तो मानना है वो, और स्वरूप बनना तब बाबा कहता है जब हम ज्ञान को अपना बना लेते हैं। अपना बना लेते हैं माना जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, और बाबा उसको कहता है विचार सागर मंथन करना, घोटना या उगारना। जब तक हमने ज्ञान को स्मृति में बार बार नहीं लाया है, जैसे कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो भी प्रश्नों में चले जाते हैं, बार बार व्यर्थ संकल्पों का चक्र चलता है ना, एक बार व्यर्थ संकल्प शुरू होते हैं तो इतना जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, ये क्या हुआ, अब कैसे होगा, मतलब जो के प्रश्नों में हम व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं, बाबा कहता है वही किसमें करो, वही किसमें करो, ज्ञान मंथन में। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, उसकी गहराई में जाने के लिए बाबा ने ये बात क्यों कही, इसका राज क्या है। और अगर मैंने इसको प्रयोग किया तो कैसे मुझे लाभ होगा, इससे कैसे मेरी उन्नति होगी, वही क क क ना, उसको इस तरह से हम यूज करें ज्ञान मंथन के समय गहराई में जाने में। जैसे आज बाबा ने धर्म और कर्म की बात कही, तो बाबा ने हमें क्या कहा, धर्म और कर्म दो रस्सियां हैं, अगर दोनों रस्सियां बराबर हैं तो फिर झूल सकते हैं, झूला दो रस्सियों के ऊपर चलता है, और अगर एक रस्सी छोटी है, एक रस्सी बड़ी है, या एक रस्सी ढीली है, तो वो झूला कैसे चलेगा। तो या तो हम पहले धर्म करते थे और कर्म नहीं करते थे, या फिर कर्म कर रहे थे धर्म छोड़ रहे थे। धर्म का अर्थ बाबा ने क्या बताया, विशेष धारणा। अब वो विशेष धारणा, मैं कौन, मैं क्या हूं, अब मैं क्या हूं वो कई तरह से हो सकता है। बाबा ने कहा देह अभिमान में जब थे, अपने को मानव समझते थे, तब सारे कर्म उल्टे हुए उस धर्म के आधार पर, और जब समझ लिया कि मैं आत्मा हूं तो ब्राह्मण जीवन में कर्म बदल गया, आत्मा समझते ही कर्म बदल गया। अब सबसे पहला पाठ हमारा आत्मा का है, आत्मा को मानो, आत्म ज्ञान को या देही अभिमानी स्थिति को हमें स्वरूप में लाना है, इसकी गहराई में जाना है। पहला पाठ यही है ना, बाबा कहता है पहला पाठ भी और अंतिम पाठ भी है, अंत तक भी यही पाठ हमें अपने को पक्का कराते रहना है। इसलिए हर दिन बाबा भी मुरली में हमें पक्का कराते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन देही अभिमानी स्थिति का पाठ नहीं होता है। तो देही अभिमानी स्थिति बनेगी तो क्या फायदे हो सकते हैं हमें, जैसे बाबा नहीं कहता गाय जो है वो खाना खा लेती है फिर बाद में उगाड़ती है उसको, और जब खाना पच जाता है तभी वो शक्ति बनता है, जब तक वो पचा नहीं है तब तक शरीर को उससे शक्ति नहीं मिल सकती। तो जब तक वो अंदर नहीं गया है तब तक वो स्वरूप में आ ही नहीं सकता। कितना भी सुन लो, रोज आत्मा सुन लो, रोज योग में बैठते हैं, शाम को भी योग में बैठते हैं, थोड़ा समय आत्मा याद कर लेते हैं, सारा दिन क्या होता है, सारा दिन देह अभिमान में, सारा दिन कर्म कॉन्शियस होते हैं। जैसे ही देह अभिमान में आए फिर से वही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि देह अभिमान माना, देह अभिमान विकारों की जड़ है, आत्माभिमान गुणों की कुंजी है, ऐसा कहेंगे। तो देह अभिमान में आते ही कब पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता, संस्कारों की चाबी लग जाती, जैसे आज बाबा ने कहा। संस्कार कैसे काम करते हैं, आपने जो चाबी लगा दी। तो खैर, हमें निरंतर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, और यदि हम कर रहे हैं, उसकी गहराई में जा रहे हैं, तो फिर हमारी दृष्टि वृत्ति सदा आत्मिक भाव की होगी, स्वयं को भी आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, तो दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी। भाई भाई की दृष्टि कैसी दृष्टि है, शुद्ध और पवित्र दृष्टि है। तो सबसे पहली विजय देह अभिमान पर, जिसको बाबा कहता है जैसे ही देही अभिमानी हुए, देह अभिमान पर विजय हुई, दूसरा काम विकार पर विजय हुई, लाभ क्या मिला। नहीं तो देह अभिमान में आते ही दूसरे की देह पर दृष्टि जा सकती है, हमें दैहिक आकर्षण हो सकता है, उसके गुण प्रभावित कर सकते हैं, उसका व्यक्तित्व प्रभावित कर सकता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो यदि हम किसी के लगाव चुकाव में आ गए, अब दुनिया वालों जैसे काम विकार तो ब्राह्मणों में नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म रूप में इमर्ज होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आकर्षण लगाव चुकाव होगा, तो वो क्या करेगा, मेरे योग को कमजोर करेगा। जब भी हम योग में बैठेंगे वो आत्मा मेरे सामने जरूर आएगी, निशानी है लगाव चुकाव की, क्योंकि बुद्धि का चुकाव है ना उसकी तरफ, याद करना चाहते हैं बाबा को लेकिन बाबा याद नहीं आएगा उनसे जो हमने दिल की लेन देन की, क्योंकि या तो वो बहुत सहयोगी होते हैं हमारे, चाहे वो सेवा में सहयोगी हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो कहने का भाव क्या है, जब मैंने देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया तो फिर निरंतर मेरी पवित्रता की स्थिति बनती है। आज भी बाबा ने ये बात कही कि धरत परिये धर्म न छोड़िए, क्योंकि पवित्रता का वो फाउंडेशन है। फिर अगर हम आत्मिक स्मृति में हैं, तो हमारे वाइब्रेशन होते हैं सुख शांति के, पवित्रता के। हम ग्रस्त में रहते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति से अन्य आत्माएं भी उस रूहानियत को अनुभव करती हैं। चेहरे पर वो रूहानियत है, पवित्रता की झलक है, सुख शांति की झलक है, जो आपको अन्य आत्माओं से न्यारा बनाती है। तो आप नेचुरल सेवा करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा चलन, हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टि वृत्ति सेवा करती है। हमारा प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ता है, उनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। नहीं तो क्या हो सकता है, तमोगुणी वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं, अगर मैं अपनी स्मृति स्वरूप में नहीं हूं तो वो वाइब्रेशन मुझे कमजोर कर सकते हैं, मेरे मन की स्थिति को हलचल में ला सकते हैं। और कई भाई बहने शिकायत भी करते हैं, ऐसा कहते भी हैं, क्या करें, दुनिया में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो असर आ ही जाता है। लेकिन आज की मुरली में भी बाबा ने क्या टाइटल दिया, हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो मेरा प्रभाव पड़ना चाहिए कि उनका प्रभाव मेरे पर पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब मेरी स्थिति इतनी पावरफुल नहीं है कि मेरा प्रभाव उन पर पड़े। तो ये इसका मतलब मैं अभी तक स्वरूप नहीं बनी हूं। ये अपनी चेकिंग है, हम चेकिंग कर सकते हैं कि अगर अभी तक भी अन्य आत्माओं का प्रभाव, उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता है। कोई भी प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं, एक तो ये इम्प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, दूसरे हो सकते हैं कोई हमें नेगेटिव वृत्ति हमारे प्रति रखते हैं, यानी कोई ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, या बदले की भावना रखते हैं, उसके भी वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी हमें हलचल में ला सकते हैं, वो भी सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं। लेकिन यदि मेरी आत्मिक स्थिति पावरफुल है तो वो वाइब्रेशंस को भी हम परख लेंगे। जैसे परखने और निर्णय करने की शक्ति बाबा कहता है ना, तो परखने और निर्णय करने की शक्ति भी हमारी श्रेष्ठ तब होती है जब देही अभिमानी स्थिति होती है, तब हम उस स्तर तक देख सकते हैं और उससे अपने आप को सावधान कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना, शुभ भावना, मेरा स्वभाव वही है चाहे कोई कैसा भी है। आज कहा ना बाबा ने, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। और बाबा के संस्कार कौन से हैं? बाबा के संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, परोपकारी और वरदाता। तो मेरी आत्मिक स्मृति है तो मेरे वो संस्कार इमर्ज रहेंगे, मुझे स्मृति में रहेगा। आत्मा समझते हैं तो हम देह और देह के संबंधों से सहज न्यारे हो सकते हैं और बाप के प्यारे हो सकते हैं, न्यारे और प्यारे। न्यारे नहीं बने तो प्यारे भी नहीं बन सकते। बाबा ने कल की मुरली में कहा ना, कितनी पंचायत है देह और देह के संबंधों की, कितनी पंचायत है। या आज भी बाबा ने कहा, स्वयं की देह को देखना भी क्या है, पर दर्शन करना है। तो दूसरे की देह को देखना तो है ही है, लेकिन खुद की देह का चिंतन करना वो भी पर दर्शन है। तो इसका मतलब मुझे देह भान से न्यारा रहने का निरंतर अभ्यास करना है। आत्मिक स्थिति है तो योग में एकाग्रता भी सहज होती है। बाबा इसको अशरीरी स्थिति कहते हैं। हम इसको अनेक नाम दे सकते हैं, देह अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति या बिंदु स्थिति। बिंदु स्थिति हम कहते हैं परम धाम में मैं आत्मा शिव बाबा के साथ हूं, साकार वतन में इस शरीर में मेरा जो अभ्यास है आत्मा समझने का वो आत्माभिमानी या देही अभिमानी स्थिति है। लेकिन जब मैं योग में हूं यानी बाबा के साथ कनेक्शन में हूं तब वो बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है। उस स्थिति में मैं आत्मा बाबा के सर्व गुण अपने में अनुभव करती हूँ, सर्व शक्तियां अपने में अनुभव करती हूँ और संपूर्ण पवित्र सत्व प्रधान वो स्थिति है जो अनादि स्थिति है। उस स्थिति में मन स्थित हो जाए जितना समय हम चाहें। अगर मैं 15 मिनट चाहती हूँ कि मैं परम धाम में बीच रूप स्थिति में बाबा के साथ हूँ, सिर्फ एक बाबा और मैं, हम कहेंगे एक बाप दूसरा ना कोई, तो इस स्थिति में मन टिक जाए, वो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या हम टिक पाते हैं या एक मिनट भी परम धाम में नहीं टिक पाते, दूसरे मिनट नीचे आ जाते हैं, कोई ना कोई खींच लेता है बुद्धि को नीचे। अब कुछ भी खींच सकता है, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति, जो भी हो, तन का हिसाब किताब है तो वो भी खींच सकता है, कोई व्यक्ति भी खींच सकता है, कोई परिस्थिति, कोई समस्या है वो भी मन बुद्धि को नीचे खींच सकती है। तो कोई भी बोझ है मन बुद्धि के ऊपर तो वो हमें योग में एकाग्र नहीं होने देता है। और बाबा हमें कहते हैं वर्तमान समय ज्वालामुखी योग की स्थिति चाहिए, पावरफुल योग की स्थिति चाहिए। पावरफुल योग में ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा की कट उतरती है। साधारण योग से विकर्म विनाश नहीं होते, साधारण योग से संस्कार परिवर्तन भी नहीं होते हैं। और इसीलिए कई बार हम कई भाई बहनों को देखते हैं, बहुत सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी पुराने संस्कार नहीं परिवर्तन हुए। तो इसका मतलब इतना पावरफुल योग अभी हमारा नहीं हुआ कि योग अग्नि हो जाए, या हम लगन की मगन स्थिति में, लवलीन स्थिति में, या बेहद की वैराग वृत्ति में जो बाबा के साथ योग हमारा लगता है, उस योग की स्थिति का हमें पूरा अनुभव। सॉफ्ट है, हम रोटी बनाते हैं फिर उसको सेकते हैं तो क्या होता है, रोटी बनने के बाद आटे जितनी सॉफ्ट होती है उससे तो हार्ड हो जाती है ना, तो वो सॉफ्ट आटा जो है वो आग में पकने के बाद हार्ड हो गया। और यदि मैंने आलू उबाला जो हार्ड है वो आग में उबलने के बाद सॉफ्ट हो गया। तो यदि मेरा पावरफुल योग है ज्वालामुखी योग की स्थिति बने तो मैं महसूस करूंगी कि मेरे मन की स्थिति में परिवर्तन हो गया। जब मैं योग में बैठी थी तब और जब मैं योग से उठी हूं तब महसूस होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, आप सब कर रहे हैं ना योग, योग भट्टी कर रहे हैं, आप पहले भी करते हैं, महसूस करते हैं पावरफुल योग के बाद मन की स्थिति बदल जाती है। हाँ, बदलती ही नहीं बदलती, हाँ या ना कोई जवाब नहीं दे रहे, हाँ बदलती है। तो वो निशानी है। और अतींद्रिय सुख, वो आनंद, वो खुशी, वो नशा, हल्कापन आत्मा अनुभव करती है जब हम योग में बाबा के साथ गहरे अनुभव करते हैं। और यदि उस स्मृति में हम स्थिर नहीं हो पाते, कई प्रकार के संकल्प चलते हैं ना, कल भी बाबा ने कहा जो पंचायत की बात बोली, धंधे धोरी की पंचायत या अपने देह के संबंधों की पंचायत या अपनी ही देह की पंचायत जो भी है। कल की मुरली में बाबा ने ऐसे बताया कि मकड़ी जैसे सारा जाल फैलाती हैं और फिर जाल को वो हप भी कर लेती हैं। ये पावर है वो जानवर में भी, छोटी सी मकड़ी में भी ये पावर है कि अगर वो विस्तार कर रही है जाले का तो उसे हप भी, मतलब समेट भी सकती है वो। तो ये विस्तार है जरूर, क्योंकि हम रह रहे हैं, प्रवृत्ति में रह रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि संबंधों का विस्तार नहीं है, हमारे धंधे धोरी का विस्तार नहीं है, है ना विस्तार। लेकिन जब मन बुद्धि को कार्य में लगाना है, मन बुद्धि कार्य में लगे, हम कर्म योगी बनकर के कर्म करें, वो भी बावन की श्रीमत है कि कर्म भी साधारण स्मृति में नहीं करना है, कर्म में भी बाबा की याद रहे, लेकिन वो पावरफुल योग की स्थिति नहीं है ना, लेकिन फिर भी कमाई है उसमें अगर हमने कर्म और योग को साथ लिया, जिसको बाबा ने आज का धर्म और कर्म को साथ लिया। तो कर्म सदा श्रेष्ठ होगा, कर्म साधारण नहीं होगा, कर्म सदा समर्थ होगा। तो उस याद की स्थिति में जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म हमारे, बाबा कहता है, चरित्र बनते हैं या फिर हमारे यादगार बन जाते हैं। मैं समझती हूँ पिछले संडे की मुरली थी जो बाबा ने सारा भक्ति और ज्ञान के चरित्रों का सारा यादगार बताया है। तो हम कई बार इस विस्तार को समेट नहीं पाते हैं, समेट नहीं पाते हैं माना बिंदु रूप स्थिति जो हमारी आत्मिक स्थिति है कर्मेंद्रियों से समेट कर, जैसे कछुए का मिसाल बताते हैं, कछुआ जब खाना होता है अपनी कर्मेंद्रियों को फैलाता है और बाद में समेट लेता है। तो ऐसे ही मैंने कर्मेंद्रियों का आधार लिया है कर्म करने के लिए और कर्म पूरा हुआ और पुनः मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई। कई बार हम बाबा से शिकायतें करते हैं, योग की गहराई की बात है ना, बीच में ज्ञान और योग दोनों बात हम कर रहे हैं, तो हम दूसरों की शिकायतें करते हैं। अब हर दिन कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता ही है, तो यदि हमें किसी से कंप्लेंट है तो हम बाबा के सामने वो रखने लगते हैं, या फिर हम फरियाद करते हैं बाबा से। फरियाद करना माना अर्जी डालते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो। हाँ, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, कोई कोई कहते हैं, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो या मेरे बच्चे की बुद्धि का, जो भी जिसका भी हम चाहते हैं उसका, मतलब हम अर्जी लगाते हैं, या जो भी मेरा काम हो जाए बाबा से हम चाहते हैं वो हम अर्जी लगाते हैं। कई बार हम उलाहने भी देते हैं बाबा को योग में बैठ करके। उलाहना देना माना हम इतना लेट ज्ञान में क्यों आए, या ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों बनाया, या मेरा हिसाब किताब ऐसा क्यों है, या मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। कई बार दिल शिकस्त हो जाएंगे या फिर ऐसे ही, मतलब वो बातें जब हम सोचते हैं, इसको हम कहेंगे सारे व्यर्थ संकल्प, वो योग में हमें गहरे अनुभव नहीं होने देगा। कई बार और ही योग की स्थिति से हम नीचे आ जाएंगे और मन उलझनों में उलझ जाएगा, क्योंकि बाबा से वो तार जो हमारी क्लियर बुद्धि की लाइन जो क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर नहीं है, उसमें इंटरप्शन है। जैसे टेलीफोन की लाइन क्लियर नहीं होती है तो कैसे सुनाई देता है, मजा नहीं आता ना बातचीत करने में, अगर आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं लेकिन मेरी तार जुड़ नहीं रही है, कट रही है बीच बीच में, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, देह अभिमान, ये सब देह अभिमान के संकल्प हैं। आज भी बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प विकल्प क्या है, देह अभिमान के संकल्प हैं। तो वो कनेक्शन कट कट होकर के जुड़ता है तो मजा नहीं आता है, योग में बैठे तो हैं लेकिन क्या हो रहा है, बाबा से शक्ति नहीं मिल रही, बाबा से प्यार ही नहीं मिल रहा, वो सुख का अनुभव ही नहीं हो रहा है। चलो मैंने अपना मन हल्का कर लिया, तो बाबा कहता है मन हल्का करने की मना नहीं है, बाबा मना नहीं करता है। आज भी बाबा ने कहा ना, दर्पण है बाप, बाप के सामने जाकर बैठ जाओ तो पता चल जाएगा कि हम गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, मन पसंद है या नहीं है। तो जरूर बाबा को हम चार्ट दें, वो मना नहीं है। चार्ट देने के लिए तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, लेकिन सिर्फ चार्ट देने तक, ऐसा नहीं उसका ही स्वरूप बन जाए। उलाहने का स्वरूप बन गए, शिकायत का स्वरूप बन गए, ज्ञान स्वरूप बनने की बजाय, सुख स्वरूप बनने की बजाय, शांत स्वरूप बनने की बजाय, शक्ति स्वरूप बनने की बजाय हम क्या स्वरूप बन गए। तो ये चाल जो हम फैलाते हैं ना, ये हप करना आना चाहिए, इसको फुल स्टॉप देना आना चाहिए। और वो फुल स्टॉप क्या है? ड्रामा। तीन फुल स्टॉप है हमारे। एक आत्मा का फुल स्टॉप है, सारा विस्तार समेट कर किसमें आ जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। दूसरा फुल स्टॉप है बाबा। बाबा को पा लिया माना सब कुछ पा लिया, मेरा संसार बाबा है। जब हमने समझा व्यक्ति वैभव सब बाबा में समाये हैं, तो बाकी सब इच्छाओं को बिंदु लग जाता है। नहीं तो इच्छाओं का भी बहुत विस्तार होता है। तो समेटने का दूसरा बिंदु है बाबा, और तीसरा बिंदु है ड्रामा। माना जो हुआ उसमें कल्याण है, ड्रामा में जो भी है वो मेरे पार्ट के लिए कल्याणकारी ही है। तो इस रीति से पूरी तरह से हम मन को समेट कर जब बाबा के पास मन को लगाते हैं, तब फिर हम एकाग्रता का अनुभव करते हैं, तब वो लगन में मगन स्थिति। और उस समय क्या चिंतन करना है? बाबा से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं उसका स्मरण करना है, प्राप्तियों के गीत गाना है। अब प्राप्तियां क्या है? आज बाबा ने कहा कितने टाइटल्स बाबा ने दिए हैं आपको, एक पुस्तक बना लो आप। टाइटल्स क्या है? टाइटल्स क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर ज्ञान सागर तो हूँ लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। बोलो आप भी, अभी हमें स्मृति में लाना है ना। फिर बाप समान विश्व सेवाधारी हूँ, हाँ मैं ही भविष्य में देवता बनने वाली आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये स्मृति में लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बाबा के प्रति स्नेह होगा, भगवान ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मेरा जीवन कैसा था, कौड़ी जैसा हमारा जीवन, ऐसे बाबा कहते ना, कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। इतना ऊंच, इतना श्रेष्ठ, इतना महान, जो कल बाबा ने मुरली में कहा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं, कभी सपने में भी सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो वो जब बाबा के प्रति भाव हमारे मन में आएगा कि भगवान ने हमें क्या से क्या बना दिया, फर्श से उठाकर बाबा हमें अर्श पर ले आया है ना, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण बना दिया, तो फिर हम उसके लव में सहज लीन हो जाएंगे। किसी से हमें प्राप्ति होती है तो उसके प्रति स्नेह होता ही नहीं होता है। तो जितना गहरा स्नेह होगा बाबा के प्रति, अब देखिए हम कौन सा चिंतन कर रहे हैं जो बाबा के प्रति स्नेह पैदा करेगा, और कौन सा चिंतन करेंगे जो हमें ऊपर से नीचे उतार देगा। तो उस पर योग की गहराई निर्भर करती है कि मैं अपने चिंतन को किस दिशा में ले जा रही हूँ। ये अटेंशन चाहिए, अटेंशन का पहरा चाहिए। तो यदि मेरी आत्मिक स्थिति है तो मेरे लिए अपने आप को विस्तार से समेटना बहुत सहज होता है, और अपने गुणों का स्मरण करते हुए बाबा के गुणों और प्राप्तियों का स्मरण करना भी सहज होता है। देही अभिमानी स्थिति में ही आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं ना, इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी कैसे होते हैं? देही अभिमानी कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। कई मुरली साकार मुरली में बाबा कहता है, तो मीठे कैसे होंगे? जब गुणवान होंगे तभी उनका व्यवहार मीठा होगा। और वो गुण कौन से हैं? शांति, प्रेम, सुख, आनंद, रहम, करुणा, जो भी हम कहते हैं सहयोग की भावना, ये सारे गुण हमें मीठा बनाते हैं। तो वो इमर्ज होते जाएंगे जैसे जैसे हमारी आत्मिक स्थिति होगी। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हमें देह के हिसाब किताब भी चुकतू करना सहज होता है। तन के हिसाब किताब भी तो आते हैं ना, तो वो कर्म भोग को हम कर्म योग से सहज समाप्त कर सकते हैं। वो सूली से कांटा हमें अनुभव होता है। अगर बहुत दर्द भी होगा ना तो अशरीरी स्थिति में वो दर्द कम महसूस होगा या बहुत जल्दी वो दर्द हमारा चला जाएगा, ऐसा बहुत भाई बहनों को अनुभव होता है। मुझे याद है एक बार एक डॉक्टर हैं, अपने अमेरिका में रहती हैं, डॉक्टर हंसा रावल, आप में से कई भाई बहने जानते भी होंगे, वो शायद बड़ौदा के ही हैं, जानते हैं कोई? अच्छा, कुछ कुछ जानते हैं। तो वो एक बार यहाँ मधुबन में अपना अनुभव सुना रहे थे कि उनको दांत निकलवाना था और दांत को पहले सुन्न किया जाता है, निकालने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर या सुन्न करने की दवाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, इतना दर्द आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आप चिंता मत करो, मुझे आता है मुझे अपने दर्द को कैसे कंट्रोल करना है। और उन्होंने सचमुच बिना इंजेक्शन लगवाए अपना दांत निकलवाया। तो उसने कहा कि उतना समय मैं अशरीरी स्थिति में बाबा के साथ परम धाम में थी और मुझे पता ही नहीं चला कि डॉक्टर ने कब दांत निकाल दिया। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि हम भी मेडिकल फील्ड से हैं। कई बार हमने ट्राई किया तो हमने देखा उसमें हमें सफलता मिलती है, लेकिन एकाग्रता होनी चाहिए, पावरफुल स्थिति होनी चाहिए, साधारण स्थिति में नहीं। लेकिन जब व्यस्त संकल्प से मुक्त स्थिति और उसमें जरा भी संशय नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विषयंती, कहां भी संशय का अंश मात्र भी आया, आपके योग की गहराई भी तब तक नहीं होगी जब तक आपको बाबा में और बाबा के ज्ञान में पूरा निश्चय नहीं है। कहीं भी आपको संशय है आपका पावरफुल योग नहीं होगा, वो संशय आपकी बुद्धि को बार बार नीचे ले आएगा ना। तो इसीलिए पूरा निश्चय से जब हम करते हैं तो बाबा की भी पूरी मदद होती है और जो हम असंभव समझते हैं वो भी संभव हो जाता है। जो हमें लगता है तो बहुत कठिन है, नहीं हो सकता है, लेकिन कर सकते हैं, तो वो एक चैलेंज के रूप में हम कह सकते हैं या माया को हम चैलेंज कर सकते हैं, अपने कर्म भोग अपने हिसाब किताब को भी हम, यानी प्रकृति, हिसाब किताब क्या है, प्रकृति है, उस प्रकृति को भी हम चैलेंज करके उसके ऊपर हम विजय हो सकते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हम कैसे करें, तो बाबा हमें सिखाते हैं कि हमेशा समझो ये तन मेरा नहीं है, ये बाबा की दी हुई अमानत है। हम कहते हैं धन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो ये बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, ये तन मेरा नहीं है, तन बाबा का है। बाबा ने मुझे इस कर्म क्षेत्र पर आप थोड़ा समय के हम जो मेहमान हैं, अभी हम क्या हैं यहाँ पर इस सृष्टि पर, थोड़े समय के मेहमान हैं, अभी हमें वापस घर जाना है। तो जैसे शिव बाबा मेहमान बनकर आते हैं, परमधाम से मेहमान बनकर आते हैं, तो यहाँ रह नहीं जाते, पार्ट बजा करके और फिर चले जाते हैं। तो मुझे भी यहाँ पार्ट बजा करके वापस घर जाना है। तो मेहमान का कहीं मोह नहीं होता है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर हम कहीं मेहमान बन करके जाते हैं, मानो आप विदेश गए, हाँ भारत से तो बहुत अच्छा होगा विदेश, ऐसे ही कहेंगे, हमने देखा सीन सीनरी, बहुत स्थान, बाबा के सेंटर, हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम समझते हैं मेरा है, अपनापन होता है उसमें, कभी पता है कि हम यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, वापस जाना है, तो कितना भी अच्छा है, कोई लगाव हमें उससे नहीं होता है। तो यदि हम यहाँ वर्तमान संगम युग पर स्वयं को मेहमान समझकर चलेंगे तो फिर इस कर्म क्षेत्र से, कर्मेंद्रियों से न्यारा, देह भान से न्यारा होना हमारे लिए सहज हो जाएगा। ये विधि हमें बाबा बताते हैं और बाबा हमें कहते हैं अमृत वेले अभ्यास करो। अमृत वेले जो समय होता है वो सहज शांति का समय होता है। उस समय प्रकृति भी शांत होती है, हमारे मन की स्थिति भी शांत होती है, हमारा मन भी सत्वप्रधान स्थिति में होता है। तो जो आत्माभिमानी या बीज रूप स्थिति का अनुभव है वो जितना पावरफुल हमें अमृत वेले अनुभव हो सकता है उतना सारा दिन में शायद हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और उस समय बाबा के भी वरदानों का समय है, तो यदि हमने एक संकल्प किया तो बाबा की भी मदद मिल जाती है। जो हम संकल्प करते हैं वो बाबा कहता है वो संकल्प उस समय सिद्ध होने का समय है। लेकिन अगर हमारा योग क्या कहेंगे हम, योग की स्थिति में क्या होता है, अमृत वेले बैठते तो हैं, नियम जरूर निभाते हैं, सभी तो नहीं ना, सभी का तो योग ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा करते हैं कि जरूर उठकर बैठते हैं बाबा की याद में, लेकिन फिर पूरा ही शांति का अनुभव करते हैं और वो शांति बीज रूप स्थिति की शांति नहीं। तो वो शांति से जब हम अपने आप को फ्री कर पाए, जो नींद की शांति है, तभी हम वो बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं अमृत वेले। और एक बार हमने अमृत वेले वो अनुभव किया तो सारा दिन फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मन उस स्थिति में स्थित रहेगा, हम सहज ही देहभान से न्यारे रहेंगे, वो बाबा का जैसे हमें वरदान हो जाता है। फिर भी रात को सोने से पहले हम चेकिंग जरूर करें। जैसे मुझे याद है घंटे घंटे जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि हर घंटे में कम से कम एक मिनट भी, वैसे तो बाबा ने कहा 5 मिनट, पर मानो हम बहुत व्यस्त हैं तो 1 मिनट भी हमारी अशरीरी या निराकारी स्थिति हो। ये अभ्यास वर्तमान समय के हिसाब से आवश्यक है। तब बड़ी दादी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी थे उस समय, और जैसे ही बाबा ने कहा दादी ने अगले दिन से हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया, और तब से ये घंटे घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल जो 1 मिनट का होता है वो ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो हम जहां रहते हैं जरूरी नहीं है, मधुबन में तो चलो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, लेकिन आजकल तो वैसे साधन है, आप मोबाइल में भी उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो भी हम अटेंशन रखें कि घंटे में कम से कम हमें 1 मिनट भी वो अपनी देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक गुणों का अनुभव जरूर करना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, अपने को स्मृति दिला दो फिर से, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, और फिर कर्म में आओ, फर्क पड़ जाएगा। 1 घंटे तक वो स्थिति चलेगी, फिर 1 घंटे के बाद पुनः वो अभ्यास कर लिया, आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, आत्मा के गुणों का, तो हम उसके स्वरूप बनेंगे। फिर सिर्फ जानने और मानने तक नहीं रहेगा, लेकिन फिर वो देही अभिमानी स्थिति हमारा स्वरूप होगी, तब हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे जिसे हम कहेंगे। बाबा हमें रूहानी बच्चे क्यों कहता है, क्योंकि वो हमारी आत्मा को देखता है, बाबा हमारे शरीरों को नहीं देखता है। तब हमारी स्थिति भी ऐसी होगी कि हम स्वयं को भी आत्मा समझ रहे हैं और अन्य को भी उस आत्मिक स्वरूप से ही देखेंगे, और आत्मिक स्वरूप में हमें दूसरों की कमियां नजर नहीं आती हैं। अगर हमने देह अभिमान की दृष्टि से देखा तो फिर दूसरी दृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि अब वर्तमान स्वरूप तो उस पर तो कोई ना कोई प्रभाव है ही विकार का, आप किसी का कोई विकार है, किसी का कोई विकार है, हरेक की अपने अपने प्रकार की कमी होती है और हमें नजर आ ही जाती है, जैसे कहते हैं ना दूर की नजर और नजदीक की नजर, तो बाबा कहता है दूर की नजर तो हमारी तेजी होती है। तो अगर आत्मिक दृष्टि है तो फिर उसका अनादि स्वरूप ही हम देखेंगे। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, कोई कैसा भी हो, मुझे ध्यान नहीं आपको याद है या नहीं, कुछ साल पहले की मुरली है, बाबा ने कहा अगर कोई काला कोयला भी है, मतलब बाहर से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से, अगर उसके अंदर इतने विकार आपको दिखाई देते हैं तो भी आप क्या देखो, डायमंड देखो। कोयले से ही डायमंड बनता है, प्रकृति में भी ना, अगर आप फिजिक्स किसी ने पढ़ी होगी तो डायमंड कैसे बनता है, जो दबा हुआ कोयला होता है वो हजारों वर्षों के प्रोसेस में जमीन में, कार्बन ही डायमंड, जो डायमंड है वो कार्बन ही है, लेकिन वो कार्बन एक शेप लेता है तब वो डायमंड बनता है। कोयला भी क्या है, कार्बन है ना, तो उसी कार्बन से कोयला बना है, उसी कार्बन से डायमंड बना है। तो मेरी दृष्टि वो, आत्मिक दृष्टि में वो शक्ति है कि हम उसकी वो अनादि सत्व प्रधान स्थिति को ही देखेंगे, जो बाबा ने कहा आज की मुरली में भी, ये ऐसा है नहीं, लेकिन क्या भाव, ये ऐसे से ऐसा कैसे बने, इसमें ये परिवर्तन कैसे आ जाए, वो हमारा भाव होगा, वो शुभ भाव होगा, वो रहम का भाव होगा, वो उस आत्मा को सहयोग देने का भाव होगा। तो ये जैसे मैंने एक पॉइंट बताई आपको कि अगर हम देही अभिमानी स्थिति, जो हमारा पाठ है मैं कौन, पहला पाठ और अंत में भी वही पाठ हमें काम आने वाला है। हाँ, विनाश के समय भी बाबा क्या कहता है, कौन पास होंगे, जो एक सेकंड में सब तरफ से न्यारे होकर के एक बाप की याद में स्थित हो जाएंगे। बहुत अति हलचल होगी उस समय, सभी की हलचल होगी, माया भी पेपर लेगी, प्रकृति भी पेपर लेगी, अपने पुराने संस्कार भी सामने आ सकते हैं, वातावरण भी हलचल वाला होगा, लेकिन ये सब होते हुए भी एक सेकंड में न्यारा होकर के बाप की याद में अचल अडोल एक रस स्थिति, इतनी स्मृति पक्की होगी तब हम बना सकते हैं, अंत में हम कर पाएंगे ऐसा नहीं। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास, जैसे देह भुलाए हुए भी नहीं भूलती, बाबा ने कहा ना आज चाहते हैं ना देह को भूलना, लेकिन नहीं भूलती है, क्यों नहीं भूलती है, इतना पक्का हुआ है, इतने जन्मों से स्वरूप बना हुआ है वो, तो उससे ज्यादा गहरा अभ्यास होगा तब आत्मिक स्थिति का स्वरूप बनेगा, और वही स्वरूप नेचुरल इमर्ज हो जाएगा जब अंतिम समय भी आएगा, तो यदि अभ्यास है तो, नहीं तो क्या होगा। क्या कहेंगे, पास होंगे या बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब तो पास होने वाले हैं। तो वही पाठ बाबा ने कहा अंत में काम आएगा। तो ऐसे हर बाबा ने जो हमें लेसन दिए हैं, उस लेसन की इतनी गहराई में हम जाएं और उसका स्वरूप बने, और जितना ज्ञान की गहराई होगी उतना ही योग की गहराई होगी। अगर ज्ञान की गहराई नहीं है तो योग में भी हम गहरे अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। सभी की बुद्धि रूपी जोली बहुत बहुत खजानों से भर रही है ना, और ये ऐसा खजाना है जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, संपन्न बनती है, आत्मा संपन्न बनती है, और ये संपन्नता कब तक चलेगी, हाँ जन्मों जन्म चलने वाली संपन्नता है। तो डॉक्टर सविता बेन का बहुत बहुत धन्यवाद है, फिर से सभी ये विशेष क्लास लिया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है।